क्या बात है मामा जी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप इस तरह का रिएक्शन देंगे तो उससे प्रियंका दीदी को बहुत हर्ट हो सकता है। वहीं प्रियंका अपने पिता का इस तरह का अनजाना बर्ताव देखकर पूरी तरह से रोने लगी थी। वो सोचने लगी कि जब उसके पिता ही उसे पहचान नहीं पा रहे हैं तो न जाने बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। क्या पता उसके पिता उसे पहले जैसा प्यार दे भी पाएंगे या नहीं, इस नए चेहरे के साथ कभी भी नहीं। ये सोचकर प्रियंका और भी ज्यादा रोने लगी थी। आस्था मनोज जी को पूरी तरह से डांटते हुए बोली थी, आपको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए मामा जी, देखिए प्रियंका दीदी रो रही हैं, प्लीज उन्हें संभालिए। ये बोलकर आस्था लगातार मनोज जी को शांत होने के लिए कहने लगी थी, लेकिन मनोज जी की आंखों के सामने तो कुछ अलग ही तरह के धुंधले धुंधले दृश्य आने लगे थे। वो पूरी तरह से घबरा गए थे और फिर अचानक तेज आवाज में बोले थे, नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ये मेरी बेटी। ये बोलकर अचानक मनोज जी हॉल से तुरंत ही बाहर की ओर भाग गए थे। अब तो सब लोग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए थे। वहीं स्टडी रूम में जैसे ही अरमान ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए ये सारा ड्रामा देखा और एक बार फिर आस्था की आंखों में आंसू देखे, वो पूरी तरह से गुस्से से भर गया। आकाश और सुमित उससे बहुत सारे सवाल करना चाहते थे, लेकिन अरमान ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और सीधे नीचे हॉल में आ गया। अब अरमान मनोज जी के पीछे पीछे बाहर की ओर जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने खड़ी आस्था पर पड़ी। आस्था अब भी वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा साफ बता रहा था कि वो अंदर ही अंदर कितनी टूट चुकी है। अरमान के कदम एक पल के लिए वहीं रुक गए। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, गुस्सा, दर्द और पछतावा, तीनों ही भाव उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आस्था ने भी जैसे ही अरमान को देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की हल्की सी चमक आई, लेकिन अगले ही पल उसने नजरें झुका ली। पूरा हॉल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। आकाश, सुमित, अविनाश और बाकी सभी लोग बस कभी अरमान को देख रहे थे तो कभी आस्था को। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस वक्त क्या होने वाला है। अरमान ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए, उसकी नजरें सिर्फ आस्था पर टिकी हुई थीं। लेकिन तभी आहान की आवाज गूंज उठी, अरमान भैया आप जाइए, भाभी को संभाले, मनोज मामा जी को तो मैं देखता हूँ, मैं उन्हें समझाकर वापस लेकर आ जाता हूँ, वो शायद डर गए हैं, अपनी बेटी का चेहरा बदलता देखकर परेशान हो गए होंगे, मैं हूं ना, आप जाइए। ये कहकर उसने अरमान को आस्था के पास जाने के लिए कहा। बदले में अरमान ने केवल अपनी पलकें उठाकर उसकी ओर देखा था। उसे देखकर आहान अचानक दो कदम पीछे होकर खड़ा हो गया था। उसे अरमान से अजीब सी घबराहट हो रही थी, एक अजीब सा महसूस हो रहा था। वहीं आहान मन ही मन बोला था, ये हो क्या रहा है, पता नहीं क्यों आज अरमान भाई का बर्ताव मुझे ही अजीब लग रहा है, या सच में कुछ और ही वायरस के साइड इफेक्ट है, कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा, ये सब कुछ मुझे इतना ज्यादा अजीब लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन फिलहाल उसने साथ ध्रुव को इशारा करके अपने पास बुला लिया था और दोनों मनोज जी के पीछे पीछे जाने लगे थे। वहीं आस्था ने अपनी मामी का हाथ थामकर उन्हें सोफे पर बिठा दिया था और उसे सांत्वना देने लगी थी। वो बोली थी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए मामी जी, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तब तक सीमा जी ने प्रियंका को गले से लगा लिया था और रोने लगी थी। वहीं आस्था उन्हें पूरी तरह से शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी नानी माँ आगे आई और प्रियंका और सीमा को देखकर बोली थी, शांत हो जाओ तुम दोनों, उसे तो मैं अभी बताती हूँ, अभी ठीक करती हूँ उसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची को देखकर इस तरह का बर्ताव करने की, जब हम अपनी बेटी को उसके इस नए रूप के साथ स्वीकार कर चुके हैं तो वो कौन होता है इस तरह का बर्ताव करने वाला। ये सुनकर आस्था भी थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी। वो सोचने लगी कि जब उसने पहले ही अपने मामा को इतना समझा दिया था तो फिर उसके मामा इस तरह का बर्ताव करके क्यों चले गए, आखिरकार उनके दिमाग में चल क्या रहा है। आस्था ने सोचा कि उसे बाहर जाकर एक बार मामा जी से बात करनी चाहिए। ठीक उसी वक्त अरमान तुरंत आस्था के पास आकर खड़ा हो गया था। आस्था ने अरमान को देखकर पूछा, अरमान जी आप क्या कर रहे हैं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है चलिए हम अभी चलते हैं। ये बोलकर आस्था खड़ी हो गई थी। वो सबसे पहले अपने मामा जी से मिलकर फिर अरमान की बात सुनना चाहती थी, लेकिन तभी अरमान ने उसका हाथ थाम लिया और बोला था, कहाँ जा रही हो। आस्था ने कहा, मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई जरूरी काम था, लेकिन पहले मैं मामा को देखकर आती हूँ, पता नहीं वो कहाँ चले गए, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। ये सुनकर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। आस्था को तुरंत ही अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन तब तक अरमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी एक भी बात सुने बिना उसे सीधे एक साइड में लेकर आ गया था। आस्था चौंकते हुए अरमान को देखकर बोली थी, अरमान जी आप कैसी हरकत कर रहे हैं, आप मुझे इस तरह से कैसे लेकर आ सकते हैं, आपको पता है ना कि अभी घर की सिचुएशन कैसी है, सब लोग कितने परेशान हैं। लेकिन अरमान कुछ नहीं बोला, वो बस धीरे धीरे आस्था की आंखों में आए आंसुओं को अपने रुमाल से साफ करने लगा था और बोला था, मैं आपको जानबूझकर यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि जब से आप वहाँ मौजूद हैं तब से आपकी आंखों में आंसू आए जा रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानती हैं आफत, मैं आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अरमान का इतना प्यार पाकर आस्था की आंखें नम हो गई थी। इस वक्त अरमान की आंखों में भी केवल प्यार ही नजर आ रहा था। आस्था तुरंत अरमान को गले से लगा लेती है और उसके चौड़े सीने पर अपना सर रखकर बोली थी, आप हमारी जिंदगी है अरमान जी, लेकिन पता नहीं ये सब क्या चल रहा है, बहुत बुरा लग रहा है हमें,
प्रियंका दीदी और मामा मामी के लिए। तब अरमान बड़े प्यार से बोला, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको किसी के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अरमान सिंघानिया यहाँ मौजूद है और मैं सब कुछ देख लूंगा। ये कहते हुए अरमान तुरंत आस्था की पीठ को सहलाने लगा था। फिलहाल तभी अचानक अरमान का फोन बजने लगा था। फोन की स्क्रीन पर नंबर देखकर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए थे। तभी आस्था मौका देखकर बोली थी, मैं अभी आती हूँ, तब तक आप बात कर लीजिए। तभी अरमान उसे जाते हुए देखकर बोला था, ठीक है आप जा सकती हैं, लेकिन इस बार मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। अगर इस बार आपकी आंखों में आंसू आए तो मैं आपको बिल्कुल भी किसी से मिलने के लिए जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर आस्था हल्का सा मुस्कुरा दी और फटाफट कमरे से बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर निकली, एंजल और अविनाश उसके ठीक सामने खड़े थे। उन्हें सामने देखकर आस्था हैरान हो गई और बोली थी, भैया भाभी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तब एंजल बोली थी, अरमान तुम्हें इस तरीके से कमरे में क्यों लेकर आए, क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा है? ये सुनकर आस्था तुरंत ही बोली थी, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, जैसा आप समझ रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सही सलामत हूँ, बस मैं थोड़ा सा रो रही थी तो अरमान जी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो कह रहे थे कि अगर मैं रोऊंगी तो वो मुझे वापस सबके पास नहीं जाने देंगे। ये बोलकर आस्था मुस्कुरा देती है और आगे बोली थी, हम जानते हैं वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर अविनाश ने जबरदस्ती मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की थी। तभी उसने धीरे से आस्था के सर पर हाथ रखा और बोला था,
गौरी बस हम तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, इसके अलावा अपनी जिंदगी से कुछ भी नहीं चाहते। अगर तुम अरमान के साथ खुश हो तो इससे बढ़िया बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। ये बोलकर अविनाश एंजल आस्था के साथ हॉल में आ हुए। तब तक आहान ध्रुव समझा बुझाकर मनोज जी को एक बार फिर सिंघानिया मेंशन के अंदर ले आए थे। वहीं जैसे ही आस्था ने उन्हें देखा, वो तुरंत उनके पास जाकर बोली थी, ये कहाँ गए थे अचानक? तब आहन ध्रुव बोले, भाभी लोग मामा जी को यहाँ लेकर तो आ गए, लेकिन आप जानती हैं कि ये हमसे छुपे हुए थे, ये हमसे ही छुपकर बैठे हुए थे, पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे। ये सुनकर आस्था थोड़ा सा चौंक गई थी और बोली थी, क्या कह रहे थे मामा जी? तभी आहन बोला था, पता नहीं, लेकिन वो बस यही कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी और सोचने लगी थी कि आखिर ये वो लोग कौन हैं जिनसे मामा जी इतने डरे हुए हैं। फिर आस्था ने खुद बखुद अंदाजा लगाया, जिस तरीके से प्रियंका को किडनैप करके राजवीर ने उसका चेहरा बदल दिया, उसकी यादें मिटा दी और उसके साथ इतनी बर्बरता की, तो शायद इसी वजह से मामा जी को डर लग रहा है कि राजवीर अब उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। वो उन लोगों के साथ क्या करेगा ये सोचकर ही वो डर रहे होंगे। आस्था तुरंत मनोज जी के पास आई और बोली थी, क्या बात है मामा जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और रही बात उस राजवीर जिंदल की, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उससे किस तरह से निपटना है, बस आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आस्था ने पूरे मीठे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने मामा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मनोज जी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि न जाने उन्हें कैसा अजीब सा डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा हो। मनोज जी सोफे पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती थीं, जैसे उन्हें किसी के अचानक अंदर आ जाने का डर हो। आस्था ये सब गौर से देख रही थी। वो धीरे से उनके पास बैठ गई और उनका हाथ थामते हुए बोली थी, मामा जी आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? ये सुनकर मनोज जी थोड़ा सा चौंक गए। उन्होंने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी आवाज में साफ डर छलक रहा था। आस्था ने धीरे से उनका हाथ दबाया और बोली, देखे मामा जी अगर आप हमसे कुछ छुपाएंगे तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? आपने अभी कहा था कि वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, आखिर आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? ये सुनते ही मनोज जी के चेहरे का रंग और भी उड़ गया था। उनकी आंखों के सामने जैसे कोई पुरानी याद घूम गई हो। उन्होंने धीरे धीरे कहा, बेटा तुम नहीं जानती राजवीर अकेला नहीं है। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग एकदम चौंक गए थे। आस्था ने तुरंत पूछा, मतलब? मनोज जी ने गहरी सांस ली और बोले, राजवीर के पीछे बहुत बड़े लोग हैं, ऐसे लोग जिनसे टकराना आसान नहीं है। ये सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अविनाश और आहन ध्रुव भी एक दूसरे को देखने लगे थे। तभी आस्था ने दृढ़ आवाज में कहा, मामा जी आप राजवीर के बारे में कैसे जानते हैं? और शायद आप भूल रहे हैं हमारे पति अरमान सिंघानिया हैं, और राजवीर के साथ कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसने हमारी प्रियंका दीदी के साथ ऐसा किया है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आस्था की बातों में पूरी तरह से आत्मविश्वास छलक रहा था, लेकिन अचानक मनोज जी तुरंत ही प्रियंका को देखकर बोले थे, इस लड़की को कहीं छुपा दो, इसे छुपा दो, इसी में हम सबकी भलाई है। अब मनोज जी की इस तरह की बातें आस्था को बहुत परेशान कर रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उन्हें क्या हो गया है।
तभी आस्था तुरंत वंशिका के पास गई और उसकी ओर देखकर बोली थी, मुझे लगता है कि मामा जी शायद प्रियंका दीदी का बदला हुआ चेहरा देखकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। ऐसा कीजिए, उन्हें थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कोई इंजेक्शन दे दीजिए। आप जरा भैया से कहिए वो तैयार करवा दें। वंशिका तुरंत बोली थी, तुम फिक्र मत करो आस्था, मैं देखती हूँ। वहीं अब आकाश और सुमित चुपचाप एक तरफ बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा और गलत होने वाला हो। कुछ तो था जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। इसी दौरान अचानक आकाश की नजर नानी माँ के पास बैठी हुई रश्मि पर गई थी। रश्मि काफी देर से खामोश बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। आकाश अचानक उठकर रश्मि के पास गया और उसकी ओर देखकर बोला था, रश्मि काफी देर हो गई है, तुम्हें अब जाकर आराम करना चाहिए। इस तरह ज्यादा देर तक बैठना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब नानी माँ भी तुरंत रश्मि को देखकर बोली थी, आकाश बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। बेटा ये सारी बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन इस सब चक्कर में हम तुम्हें नहीं भूल सकते। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम ज्यादा देर तक यहाँ बैठ सको। चलो फटाफट उठो और जाकर थोड़ा आराम करो। नानी माँ की बात सुनकर रश्मि ने केवल अपनी पलकें 2-3 बार झपकाई। इस वक्त सच में उसका शरीर उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए रश्मि खुद भी अब आराम करना चाहती थी। तभी आकाश ने राधिका को इशारा किया। राधिका तुरंत आगे बढ़ी और रश्मि को सहारा देकर कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचकर राधिका कुछ देर तक उसके पास बैठी रही। दोनों धीरे धीरे घर में अभी अभी जो कुछ हुआ था उसके बारे में बात करने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद रश्मि की आंखें भारी होने लगी और वो धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। वहीं राधिका कुछ देर तक चुपचाप रश्मि को निहारती रही। वो थोड़ी देर तक उसी के पास बैठी रही और फिर धीरे से उठकर बाहर निकल गई। फिलहाल दूसरी तरफ एंजल और अविनाश दोनों एक साथ एक कमरे में आ गए थे। तब तक ध्रुव ने एक इंजेक्शन मामा जी यानी मनोज जी को लगा दिया था और उन्हें आराम करने के लिए गेस्ट रूम में छोड़ दिया था। उधर सीमा जी अपनी बेटी प्रियंका को लेकर नानी माँ के साथ कमरे में आ गई थी। सीमा अपनी बेटी प्रियंका को समझाने और उसे हल्का महसूस कराने की कोशिश कर रही थी। वो उसे प्यार से समझा रही थी कि उसके पिता शायद उसका चेहरा देखकर थोड़ा घबरा गए हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो आज भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे।